एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में उतरने वाले हैं जिसने सही मायनों में इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
जी हाँ, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जैकब बर्कहार्ट की बहुत ही मशहूर किताब द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसाइन इटली। अब देखिए, नाम सुन के शायद लगे कि ये कोई बहुत भारी भरकम इतिहास की किताब होगी।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन असल में ये उस जमाने की नब्ज पकड़ने की एक कोशिश है। वो जमाना जिसने आज के मॉडर्न इंसान और मॉडर्न दुनिया की कह सकते हैं नींव डाली।
बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ मतलब 14वीं से 16वीं सदी के इटली की कहानी भर नहीं है।
नहीं,
ये समझने की कोशिश है कि वो सामाजिक ढांचा, वो सोच कैसे बदली जिसने हमें वैसा बनाया जैसा हम आज हैं। आज हम जो इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद की बात करते हैं, अपनी पहचान, अपनी कामयाबी पर इतना जोर देते हैं
जी,
या जिस तरह हम धर्म और दुनियावी चीजों को मतलब सेक्युलरिज्म अलग अलग देखते हैं या राजनीति को जैसे समझते हैं, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में हैं।
सही।
बर्कहार्ट ने अपनी किताब में उस दौर को जैसे जिंदा कर दिया है और इसने रेनेसा यानी पुनर्जागरण को सिर्फ एक शब्द ही नहीं रहने दिया बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरी अवधारणा बना दिया।
तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि बर्कहार्ट ने उस युग की आत्मा को कैसे पकड़ा और उनकी ये बातें आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। अच्छा, किताब में और गहरे जाने से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लें, जैकब बर्कहार्ट।
हाँ, ये जरूरी है।
वो 19वीं सदी के स्विस इतिहासकार थे, 1818 से 1897 तक। लेकिन सिर्फ इतिहासकार कहना शायद थोड़ा कम होगा।
हाँ वो तो है।
वो कला के बहुत गहरे जानकार थे, संस्कृति के दार्शनिक भी थे और उनकी सबसे बड़ी पहचान है सांस्कृतिक इतिहास के एक तरह से प्रणेता के तौर पर, जिसे जर्मन में कहते हैं कुल्टूर गेशीश्टे।
हाँ, मतलब ये कि वो सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों, कौन जीता कौन हारा, संधियां, इन सब के ब्यौरे से आगे निकल गए।
बिल्कुल,
उनकी दिलचस्पी थी किसी युग की पूरी कह सकते हैं उसकी फजा, उसका माहौल समझने में,
जिसे वो गाइस्ट कहते थे, उस युग की आत्मा।
आत्मा, हाँ।
उनका सवाल था, भाई उस जमाने के लोग सोचते कैसे थे, क्या चीजें उनके लिए अहम थी, सुंदरता को कैसे देखते थे, उनका रहन सहन, उनकी अंदर की दुनिया कैसी थी। ये इतिहास को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखना था।
और उनकी बैकग्राउंड भी कमाल की थी, आर्ट हिस्ट्री और क्लासिकल हिस्ट्री यानी प्राचीन ग्रीस रोम का इतिहास, दोनों पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
उन्होंने इटली की यात्राएं की, वहां की कलाकृतियों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया और ये समझा कि ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही बड़ी सांस्कृतिक लहर, एक ही मूवमेंट का हिस्सा है।
अच्छा,
एक और दिलचस्प बात है, वो अपने जमाने की जो चीजें थी 19वीं सदी की, जैसे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, उनको लेकर थोड़े शंकित रहते थे।
हाँ, क्रिटिकल थे थोड़े।
हाँ, थोड़े क्रिटिकल थे और शायद इसी दूरी ने, इसी नजरिए ने उन्हें रेनेसा के व्यक्तिवाद की ताकत को, मतलब उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ज्यादा साफ साफ देखने में मदद की।
सही कहा, वो अपने समय के शोर से थोड़ा हटकर अतीत की नब्ज ज्यादा बेहतर पकड़ पाए। तो अब आते हैं किताब पर।
जी,
जैसा हमने शुरू में कहा, ये 14वीं से 16वीं सदी के इटली का एक जीता जागता पैनोरामा है। राजनीति, समाज, कला, सोच, सब कुछ इसमें शामिल है। बर्कहार्ट का असल मकसद उस दौर की उस अनोखी आत्मा को पकड़ना था जिसे वो मॉडर्निटी यानी आधुनिकता का जन्म स्थान मानते थे। और ये कोई सीधी साधी टाइमलाइन नहीं है कि इस साल ये हुआ, अगले साल वो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस किताब का जो दिल है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो है एक विचार, व्यक्ति का विकास,
डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल।
हाँ, बर्कहार्ट का तर्क ये है कि मध्य युग में इंसान की पहचान उसके समूह से जुड़ी थी, उसका परिवार, उसकी जाति, उसका समुदाय, उसका चर्च।
हाँ, मतलब वो अकेला कुछ नहीं था।
हाँ, वो मानो एक सामूहिक पर्दे के पीछे जी रहा था, अपनी अलग पहचान से लगभग अनजान। बर्कहार्ट कहते हैं कि रेनेसा इटली में ये पर्दा पहली बार हटा, या कह लीजिए कि हवा में घुल गया।
वाह, क्या उपमा है, पर्दा हवा में घुल गया।
हाँ, और इंसान पहली बार खुद को एक स्वतंत्र, सेल्फ अवेयर, अपनी क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगा।
ये पर्दे का हटना वाली बात ही अपने आप में बहुत दमदार है, और इसी सेंट्रल आइडिया को परत दर परत खोलने के लिए बर्कहार्ट ने किताब को 6 हिस्सों में बांटा है।
जी,
विषय के आधार पर, न कि समय के। एक यात्रा जैसी है ये किताब। शुरुआत राजनीति से होती है, राज्य एक कलाकृति के रूप में, फिर व्यक्तिवाद का उदय, फिर पुरानी क्लासिकल संस्कृति का पुनर्जागरण, फिर दुनिया और इंसान की नई खोज, फिर समाज और त्यौहार, और आखिर में नैतिकता और धर्म। इस तरह वो धीरे धीरे रेनेसा की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। तो चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहला भाग है राज्य एक कलाकृति के रूप में, द स्टेट एज अ वर्क ऑफ आर्ट। यहाँ बर्कहार्ट एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बात कहते हैं।
क्या
वो तर्क देते हैं कि आधुनिक यूरोपीय राज्य, मतलब सरकार चलाने का वो सिस्टम जिसे हम आज जानते हैं, उसका जन्म मध्ययुगीन यूरोप में कहीं और नहीं बल्कि रेनेसा इटली में हुआ। पहले क्या था, राजा का हक या तो खानदानी होता था,
हाँ, या फिर मानते थे कि भाई भगवान ने दिया है, डिवाइन राइट।
बिल्कुल डिवाइन राइट।
लेकिन इटली में हालात बिल्कुल अलग थे, वहाँ कोई एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी।
हाँ, छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते रहते थे, पोप और जो पवित्र रोमन सम्राट थे उनकी सत्ता भी कमजोर पड़ रही थी।
हाँ, और इसी उथल पुथल भरे माहौल में, चाहे मिलान के विस्कोंटी शासक हों या फ्लोरेंस और वेनिस जैसे गणराज्य,
जी,
उनके शासकों ने राज्य को भगवान भरोसे या सिर्फ विरासत की तरह नहीं चलाया, उन्होंने इसे एक कलाकृति की तरह गढ़ा। पूरी प्लानिंग, कैलकुलेशन, पावर बैलेंसिंग, कुशल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके दम पर।
सोचिए ये कितना बड़ा शिफ्ट था। राज्य अब भगवान की मर्जी या खानदान पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग, इंसानी डिजाइन का एक प्रोजेक्ट बन गया।
बिल्कुल, जासूसी का इस्तेमाल करना, टैक्स वसूलने के नए नए तरीके निकालना, चालाक डिप्लोमेसी, ये सब जरूरी हो गया।
यहाँ तक कि पोप भी अब एक तरह से दुनियावी शासकों की तरह, सीईओ की तरह बर्ताव करने लगे थे, सत्ता के खेल में पूरी तरह शामिल।
और इस लगातार लड़ाई झगड़े और अनिश्चितता का एक नतीजा ये भी हुआ कि लोगों को अपनी काबिलियत पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी हिम्मत पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा।
हाँ, सर्वाइवल के लिए।
हाँ, इसी को बर्कहार्ट वर्टू कहते हैं। ये सिर्फ टैलेंट नहीं था बल्कि मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की जिद, वो सूझबूझ।
जैसे आज कोई मुश्किल हालात में कोई नया स्टार्टअप खड़ा कर देता है अपनी लगन से।
बिल्कुल, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। और यहीं से व्यक्तिवाद के पनपने का रास्ता खुला।
और यहीं से हम आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, व्यक्ति का विकास,
द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल।
जी, ये किताब का दिल है। बर्कहार्ट मानते थे कि इटली का जो रेनेसा मानव था वो आधुनिक यूरोप के बेटों में पहला जन्मा था।
वाह, पहला जन्मा। हाँ, वो जो मध्ययुगीन सामूहिक सोच का पर्दा था वो हटा, और अपनी पहचान, अपनी काबिलियत को लेकर सजग, जागरूक व्यक्ति सामने आया।
इसके सबूत क्या थे, मतलब ये दिखता कैसा था उस जमाने में?
कई चीजें थी, जैसे प्रसिद्धि पाने की जबरदस्त इच्छा, फामा जिसे कहा गया। लोग चाहते थे कि मरने के बाद भी दुनिया उन्हें याद रखे, नाम अमर हो जाए।
अच्छा।
इसी चाहत ने मॉडर्न बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को जन्म दिया, जैसे बेनवेनुतो सेलिनी की आत्मकथा। वो बिना किसी झिझक के अपनी कामयाबियों, अपनी ताकत, यहाँ तक कि अपनी गलतियों और अपराधों के बारे में भी लिखते हैं।
अरे वाह, मतलब पूरी ईमानदारी से या शेखी बगाड़ते हुए?
शायद दोनों का मिक्सचर, लेकिन ये एक नए किस्म का आत्मविश्वास जरूर था। फिर एक नया आदर्श उभरा, ओमो यूनिवर्साले।
ओमो यूनिवर्साले, यानी यूनिवर्सल मैन।
हाँ, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, जैसे लियोन बतिस्ता अल्बर्टी थे। वो आर्किटेक्ट भी थे, म्यूजिशियन भी, लेखक भी, एथलीट भी, सब कुछ।
कमाल है।
ये सोच के इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। यहाँ तक कि मजाक और व्यंग भी अब किसी समूह या टाइप पर नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र की कमियों पर फोकस होने लगे।
ये वाकई में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे भाग पर, पुरातनता का पुनरुद्धार। यहाँ बर्कहार्ट एक और थोड़ी चौंकाने वाली, थोड़ी उल्टी लगने वाली बात कहते हैं।
अच्छा, क्या?
आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि पुरानी ग्रीक रोमन किताबें मिली, उनकी कला फिर से खोजी गई और उसी से रेनेसा शुरू हुआ, है ना?
हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है, कॉज एंड इफेक्ट।
लेकिन बर्कहार्ट ने इस पूरी सोच को पलट दिया। उन्होंने कहा, ये जो रिवाइवल था, ये पुनरुद्धार, ये रेनेसा का कारण नहीं था बल्कि उसका परिणाम था।
हैं? मतलब?
ये थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि पहले इंसान बदला, उसमें वो सेल्फ अवेयरनेस आई, वो महत्वाकांक्षा जागी, फिर उसने अपने नए आइडियाज के लिए, अपनी इस नई पहचान के लिए इंस्पिरेशन और वैलिडेशन ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर प्राचीन ग्रीस और रोम की तरफ देखा।
अच्छा, तो उसे वहां वो चीजें मिलीं जो उसकी अपनी सोच से मेल खाती थीं।
बिल्कुल, उसे वहां वीरता के, प्रसिद्धि के, दुनिया में एक्टिव लाइफ जीने के आदर्श मिले। तो ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये अपनी जरूरत के हिसाब से अतीत को चुनना और इस्तेमाल करना था। एक्टिव एंगेजमेंट था वो।
अच्छा, तो मतलब मानवतावाद, ह्यूमनिज्म का जो उदय हुआ वो इसी नजरिए से हुआ।
हाँ, पेट्रार्क जैसे जो स्कॉलर थे, उन्होंने पुराने लेखकों को सिर्फ उनकी भाषा की सुंदरता के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि उनके विचारों के लिए, उनके दुनियादार जीवन जीने के तरीके के लिए सराहा। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को खोज खोज कर निकाला गया। मेडिसी जैसे अमीर परिवारों ने बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनाई, नई अकादमियां खुली।
जी,
प्राचीन रोमन रिपब्लिक जो था वो पॉलिटिकल सोच का एक मॉडल बन गया।
यहाँ तक कि रोम के जो खंडर थे वो भी पूजनीय बन गए एक महान अतीत के सिंबल के तौर पर।
तो व्यक्ति बदला, उसने अतीत में प्रेरणा ढूंढी, और फिर अगला भाग है विश्व और मनुष्य की खोज,
द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ मैन।
हाँ,
ये भी उसी व्यक्तिवाद का ही एक विस्तार था। जब इंसान खुद को एक अलग यूनिट के तौर पर देखने लगा तो उसने अपने आसपास की दुनिया को, प्रकृति, भूगोल और अपनी भीतरी दुनिया को, इंसानी मन, भावनाएं, इनको भी एक नई, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नजर से देखना शुरू किया।
ऑब्जेक्टिव नजर से?
जैसे
कि भूगोल में रुचि बढ़ी, लोग दुनिया घूमने निकले, यात्रा वृत्तांत लिखे गए, पढ़े जाने लगे।
कोलंबस की यात्राएं भी तो इसी दौर की देन है।
हाँ, सही बात है,
डिस्कवरी का युग।
बिल्कुल, और प्रकृति को देखिए, उसे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं माना गया बल्कि उसकी सुंदरता के लिए उसे सराहा गया। पेंटिंग्स में पहली बार लैंडस्केप को अहमियत मिलने लगी।
अच्छा, इनकी कोशिश भी बढ़ी। लिटरेचर में अब सिर्फ अच्छे बुरे टाइप के किरदार नहीं थे, बल्कि जटिल मल्टी लेयर्ड चरित्र गढ़े जाने लगे। पेंटिंग्स में आप देखेंगे सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि इंसान के अंदर के भाव, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश दिखती है।
कमाल है, ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब पांचवा भाग, समाज और त्योहार।
जी,
बर्खार्ट यहां बताते हैं कि कैसे रेनेसा समाज में जन्म के आधार पर जो दीवारें थी वो थोड़ी कमजोर पड़ी। ऐसा नहीं कि खत्म हो गई।
हाँ, वो तो मुश्किल है।
हाँ, लेकिन अब टैलेंट, एजुकेशन और पैसे का महत्व बढ़ गया था। आर्टिस्ट, लेखक, स्कॉलर, जिन्हें शायद मिडिल एज में उतना सम्मान नहीं मिलता था, अब समाज में ऊंचा दर्जा पाने लगे थे।
और महिलाओं की स्थिति, क्या उसमें भी कोई बदलाव आया था?
कुछ हद तक। बर्खार्ट बताते हैं कि कुछ ऊंचे तबके की महिलाओं को अच्छी मानवतावादी शिक्षा मिली। वो कला और साहित्य की संरक्षक बनी, पैटर्न बनी।
अच्छा।
उन्होंने सैलून आयोजित किए जहां विचारों का आदान प्रदान होता था। ये उस जमाने के हिसाब से वाकई बड़ी बात थी। और फिर आते हैं वो भव्य सार्वजनिक त्योहार, जुलूस, कार्निवल। बर्खार्ट इन्हें सिर्फ मौज मस्ती का जरिया नहीं मानते।
नहीं, तो क्या मानते हैं?
वो कहते हैं ये शासक की ताकत, उसके वैभव और उसके कंट्रोल का प्रदर्शन थे। एक तरह से चलते फिरते कला के नमूने।
चलते फिरते कला के नमूने, वाह।
हाँ, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे आज के बड़े बड़े राजनैतिक जलसे या वो जो भव्य उद्घाटन समारोह होते हैं, वो याद आ गए। वो भी तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन ही होते हैं, है ना?
बिल्कुल सही कहा, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। और अब आते हैं आखिरी, छठे भाग पर, मोरालिटी एंड रिलीजन।
हाँ,
यहाँ बर्खार्ट रेनेसां की चमक के साथ साथ उसके स्याह पक्ष को भी उजागर करते हैं। वो मानते हैं कि मध्ययुगीन नैतिक और धार्मिक बंधन जब ढीले पड़े और व्यक्तिवाद जब बेलगाम हुआ तो एक तरह का नैतिक संकट भी पैदा हुआ।
हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्या था वो स्याह पक्ष, वो डार्क साइड?
देखिए, जब मैं और मेरी महत्वाकांक्षा सबसे ऊपर हो गई तो सही गलत के पैमाने भी बदलने लगे। राजनीतिक हत्याएं, धोखा, साजिशें, बदला लेने की क्रूर भावना, ये सब जैसे आम हो गया। बोर्जिया परिवार का नाम सुना होगा।
हाँ, पोप अलेक्जेंडर द सिक्स और उनके बच्चे सिजारे और लुक्रेजिया बोर्जिया, बहुत कुख्यात।
हाँ, उन्हें इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। धर्म के प्रति रवैया भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था। लोग बाहर से तो धार्मिक रीति रिवाज निभाते थे, चर्च को दान भी देते थे, लेकिन पादरियों और पोप के नैतिक पतन को लेकर उनमें गहरा शक और गुस्सा भी था। अंधविश्वास, खासकर ज्योतिष और जादू टोने में विश्वास बहुत बढ़ गया था।
अच्छा, अंधविश्वास बढ़ गया था।
हाँ, और सांसारिक नाम और शोहरत की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि परलोक की चिंता जैसे पीछे छूट गई थी। बर्कहार्ट का ये भी मानना है कि इसी मिलेजुले माहौल की वजह से जो उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चला,
हाँ, मार्टिन लूथर वाला,
हाँ, वो इटली में जड़े नहीं जमा पाया। यहाँ के लोग चर्च की आलोचना तो करते थे पर धर्म को पूरी तरह बदलने को शायद तैयार नहीं थे।
तो ये थी किताब के 6 हिस्सों की एक कह सकते हैं झलक। अगर हम अब पीछे मुड़कर देखें और बर्कहार्ट के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटना चाहें तो क्या बातें उभरती हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है आधुनिक व्यक्तिवाद का जन्म।
हाँ बिल्कुल,
ये सोच कि हर इंसान अपने आप में खास है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसका बीज यहीं पड़ा। आज हमारे समाज में, खासकर शहरों में, जो आगे बढ़ने की होड़ है, अपनी पहचान बनाने की जो जद्दोजहद है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से दिखती है।
हाँ, और दूसरा अहम संदेश है राज्य एक सचेत रचना के रूप में। राजनीति को अब सिर्फ भगवान की मर्जी या खानदानी हक नहीं माना गया,
हाँ,
बल्कि इंसानी दिमाग, योजना और मैनेजमेंट का नतीजा समझा गया। आज हम जिस तरह सरकारों के कामकाज को देखते हैं, उनकी नीतियों को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों की स्ट्रैटेजी को,
हाँ, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी,
हाँ, उसकी नींव यहीं पड़ी।
तीसरा, नजरिए में बदलाव और धर्म निरपेक्षता की आहट। फोकस परलोक से हटकर इसी दुनिया पर आया, इसी जीवन में नाम कमाने पर, इंसानी ज्ञान और क्षमता पर टिकने लगा। धर्म खत्म नहीं हुआ पर जिंदगी के दूसरे पहलू ज्यादा अहम हो गए। आज भी हम अपने समाज में परंपरा और आधुनिकता या धार्मिक मूल्यों और दुनियावी लक्ष्यों के बीच जो एक कश्मकश देखते हैं,
हाँ, वो बैलेंस,
हाँ, उस बैलेंस को समझने के लिए ये बदलाव जानना बहुत जरूरी है।
चौथा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो है संस्कृति की एकता। बर्कहार्ट दिखाते हैं कि कैसे उस दौर की राजनीति, कला, साहित्य, सामाजिक व्यवहार, ये सब अलग अलग खांचे नहीं थे, बल्कि एक ही युग की आत्मा के अलग अलग चेहरे थे। यह हमें सिखाता है कि अपने आसपास की चीजों को जोड़कर कैसे देखें। हमारी फिल्में, हमारी राजनीति, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, ये सब एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं।
और पांचवा, जो एक तरह की चेतावनी भी है, प्रतिभा और अनैतिकता का साथ साथ चलना।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
बेलगाम व्यक्तिवाद ने जहाँ एक तरफ लियोनार्डो दा विंची जैसे महान जीनियस पैदा किए, वहीं दूसरी तरफ सेजारे बोर्जिया जैसी क्रूरता को भी जन्म दिया। ये दिखाता है कि आजादी और महत्वाकांक्षा अगर बिना नैतिक लगाम के हों तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। शक्ति के साथ जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, ये सबक आज भी उतना ही सच्चा है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों के लिए।
सही कहा। देखिए, इस किताब में शायद आपको आसानी से याद रह जाने वाले छोटे छोटे कोट्स कम मिले।
हाँ, वो वन लाइनर टाइप नहीं है।
हाँ, लेकिन गहरे, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार भरे पड़े हैं। चलिए कुछ मुख्य विचारों को फिर से याद करते हैं अपने शब्दों में। पहला विचार, मध्य युग में इंसान की चेतना मानो एक सामूहिक पर्दे के पीछे सो रही थी। इटली में ये पर्दा सबसे पहले हवा में घुल गया और इंसान एक आध्यात्मिक यानी आत्म जागरूक व्यक्ति बन गया। ये व्यक्तिवाद के जन्म की मेरे ख्याल से सबसे सटीक तस्वीर है, समूह से अलग अपनी पहचान को पाना।
दूसरा विचार, राज्य सोच विचार और हिसाब किताब का नतीजा था। राज्य एक कलाकृति की तरह बनाया गया। ये राजनीति को देखने का बिल्कुल नया तरीका था। इसे दैवीय नहीं बल्कि मानवीय, रचनात्मक और तर्कसंगत गतिविधि मानना।
तीसरा विचार, ये सिर्फ पुरानी चीजों, पुरातंत्रता को दोबारा जिंदा करना नहीं था, बल्कि इटली की अपनी प्रतिभा के साथ उसका मेल था जिसने पश्चिमी दुनिया को जीत लिया।
यानी रेनेसा सिर्फ नकल नहीं था,
नहीं,
बल्कि एक नई मौलिक रचना थी जिसमें अतीत का इस्तेमाल एक साधन की तरह किया गया। ये तीनों विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर ये कि कैसे एक सोच बदलती है व्यक्ति के बारे में, राज्य के बारे में, इतिहास के बारे में, और फिर पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अब सवाल ये है कि आज इस 21वीं सदी में हम बर्कहार्ट की इस लगभग 150 साल पुरानी किताब से क्या सीख सकते हैं, क्या रिलेवेंस है इसका? पहली चीज तो मेरे हिसाब से ये है कि हम अपनी आधुनिकता की जड़ों को बेहतर समझ सकते हैं। व्यक्ति की आजादी और समाज के साथ उसके रिश्ते का जो तनाव रेनेसा में उभरा,
हाँ,
वो आज भी हमारे सामने है। हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे साधें, ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है।
दूसरी अहम सीख है समग्र सोच, यानी होलिस्टिक थिंकिंग की ताकत। बर्कहार्ट दिखाते हैं कि कला, राजनीति, समाज, विज्ञान, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं।
हाँ,
उनको बड़े कैनवस पर देखने, अलग अलग फील्ड्स को जोड़ने, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग के लिए प्रेरित करती है।
तीसरा, शक्ति और छवि निर्माण का खेल समझना, मतलब पावर और इमेज बिल्डिंग।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है।
रेनेसा के शासकों ने कला, आर्किटेक्चर, भव्य उत्सवों का इस्तेमाल अपनी ताकत और रुतबा दिखाने के लिए किया। आज की राजनीति में देखिए।
हाँ बिल्कुल।
कॉर्पोरेट दुनिया में ब्रांडिंग को देखिए, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हम अपनी जो इमेज बनाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वही सिद्धांत काम कर रहा है।
इमेज बनाना और उसे बनाए रखना कितना अहम हो गया है।
चौथा, व्यक्तिगत विकास की प्रेरणा। वो जो रेनेसा का होमो यूनिवर्सले यानी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का आदर्श था,
वो हमें याद दिलाता है कि इंसान की सीखने की क्षमता असीम है। ये हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उकसाता है। सिर्फ अपनी नौकरी या पेशे तक सीमित न रहने की प्रेरणा देता है।
और पांचवा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, महत्वाकांक्षा पर एक जरूरी चेतावनी।
हाँ, वो सावधानी। ये किताब दिखाती है कि अगर महत्वाकांक्षा के साथ नैतिक दिशा ना हो, कोई मॉरल कॉम्पस ना हो, तो वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी हो सकती है। ये उन सबके लिए सोचने की बात है जो ताकत और प्रभाव चाहते हैं, लीडर्स के लिए खासकर।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि रेनेसा सिर्फ खूबसूरत पेंटिंग्स और इमारतों का दौर नहीं था।
नहीं,
वो आधुनिक इंसान के मन का, उसकी सोच का जन्म था। और ये जन्म आसान नहीं था, इसमें जबरदस्त क्रिएटिविटी थी तो उतनी ही गहरी उथल पुथल और अंधेरा भी था। व्यक्तिवाद एक दोधारी तलवार थी और शायद आज भी है। और मेरे लिए बर्कहार्ट का इतिहास लिखने का तरीका वो कल्चर विशिष्ट बहुत मायने रखता है। कैसे उन्होंने अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरे युग की तस्वीर बुनी, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की। ये हमें अपने समय को भी इसी तरह देखने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आज के समाज की, हमारी संस्कृति की वो अंदरूनी आत्मा क्या है, क्या चीजें हैं जो हमें चला रही हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है।
मुझे सबसे ज्यादा हैरान ये बात करती है कि कैसे कुछ ही सदियों में इंसान की अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोच इतनी फंडामेंटली बदल सकती है।
हाँ,
ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जिन चीजों को स्थायी मानते हैं, जिन विचारों को पत्थर की लकीर समझते हैं, क्या वो भी बदल सकती हैं?
और मेरे लिए वो विरोधाभास महानतम कला और गहरी अनैतिकता का एक ही समय, एक ही जगह पर मौजूद होना, ये याद दिलाता है कि इंसानी तरक्की कोई सीधी सपाट रेखा नहीं है। ये बहुत जटिल है, उलझी हुई है और कई बार विरोधाभासी होती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।